अध्याय दो काल निर्णय। भारत के अन्य बहुत से श्रेष्ठ कवियों की भांति विद्यापति का तिथि काल भी अद्यावधि अनुमान का विषय बना हुआ है। यद्यपि विद्यापति का संबंध एक विशिष्ट राजघराने से था और इस प्रकार वे मात्र कवि ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्ति कहे जा सकते हैं, किंतु अभाग्यवश इतने प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्यक्ति के समय के विषय में कोई ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका है जिस पर मतैक्य हो सके। विद्यापति की जीवन तिथि का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, अतः जीवन तिथि के निर्धारण का कार्य मात्र अनुमान का विषय रह जाता है। विद्यापति के पिता गणपति ठक्कुर राजा गणेश्वर के सभासद थे और ऐसा माना जाता है कि विद्यापति अपने पिता के साथ राजा गणेश्वर के दरबार में कई बार गए थे। उस समय उनकी अवस्था 8-10 साल से कम तो क्या रही होगी। कीर्तिलता से मालूम होता है कि राजा गणेश्वर लक्ष्मण संबत 252 में अस्लान द्वारा मारे गए। इस आधार पर चाहे तो कह सकते हैं कि विद्यापति उस समय 10-12 साल के थे, तो उनका जन्म लक्ष्मण संबत 242 के आसपास हुआ होगा। सबसे पहले श्री नगेंद्रनाथ गुप्त ने विद्यापति पदावली की भूमिका में लिखा कि 243 संबत को राजा शिव सिंह का जन्म काल मान लेने पर हम मान सकते हैं कि कवि विद्यापति का जन्म लक्ष्मण संबत 241 के आसपास हुआ होगा, क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध है कि शिव सिंह 50 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठे और विद्यापति अवस्था में इनसे 2 साल बड़े थे। इसी के आधार पर विद्यापति का जन्म संबत 241 में अर्थात ईस्वी सन 1360 में हुआ ऐसा मान लिया गया। जन्मतिथि निर्धारण के विषय में किसी बाह्य साक्ष्य के अभाव की अवस्था में हमें अन्य साक्ष्य पर विचार करना चाहिए। कीर्तिलता पुस्तक से ऐसा मालूम नहीं होता है कि वह विद्यापति की प्रारंभिक रचनाओं में एक है, जैसा बहुत से विद्वान मानते हैं। विद्यापति ने इस ग्रंथ में अपनी कविता को बालचंद्र की कहा है। बालचंद विज्जावई भाषा दुहु नहीं लागई दुज्जन हासा, ओ परमेश्वर इरसिर सोहई ईणिच्चई नार मन मोहई। इस पद में ऐसा ध्वनित होता है कि इसके पहले विद्यापति की कोई महत्वपूर्ण रचना प्रकाश में नहीं आई थी, पर कवि की इन पंक्तियों से अपनी कविता के विषय में उनका विश्वास झलकता और यह उक्ति यूं ही कही गई नहीं मालूम होती। कवि कहता है कि यदि मेरी कविता रसपूर्ण होगी तो जो भी सुनेगा प्रशंसा करेगा, जो सज्जन हैं काव्य रस के मर्मज्ञ हैं वे इसे पसंद करेंगे, किंतु जो स्वभावेन असूया वृत्ति के हैं वे निंदा करेंगे ही। इस निंदा वाली पंक्ति से कुछ लोग सोच सकते हैं कि किसी प्रारंभिक रचना की निंदा हुई होगी, पर सज्जन प्रशंसा और दुर्जन निंदा कोई नई बात नहीं, यह मात्र एक परिपाटी है। यहाँ बालचंद्र निष्कलंकता और पुजारहता घोषित करने के लिए प्रयुक्त लगता है। अब यदि हमें कीर्तिलता के निर्माण का समय मालूम हो जाए तो हम सहज अनुमान कर सकते हैं कि विद्यापति उस समय प्रसिद्ध कवि हो चुके थे। कीर्तिलता के कथा पुरुषों में कीर्ति सिंह प्रमुख हैं। कीर्तिलता पुस्तक महाराज कीर्ति सिंह की कीर्ति को प्रज्वलित करने के लिए लिखी गई थी। कीर्तिलता से मालूम होता है कि कीर्ति सिंह ने जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह की सहायता से तिरहुत का राज्य प्राप्त किया, जिसे लक्ष्मण संबत 252 में मलिक असलान ने राजा गणेश्वर का वध करके हस्तगत कर लिया था। इस कथा में 2 घटनाएं ऐतिहासिक महत्व की आती हैं। पहली तो असलान द्वारा राजा गणेश्वर का वध और दूसरी इब्राहिम शाह की मदद से तिरहुत का उद्धार। लक्ष्मण सिंह संबत कब प्रारंभ हुआ ईश्वर विवाद है। इस समस्या पर कई प्रसिद्ध इतिहास विशेषज्ञों ने विचार किया है, किंतु अब तक किसी निश्चित तिथि पर सबका मतैक्य नहीं है। श्री कीलहर्न ने इस विषय पर बड़े परिश्रम के साथ विचार किया। उन्होंने मिथिला के 6 पुरानी पांडुलिपियों के आधार पर यह विचार किया कि लक्ष्मण संबत को 1041 शाके या 1119 ईस्वी सन में प्रथम प्रचलित मानने से पांडुलिपियों में अंकित तिथियां प्रायः ठीक बैठ जाती हैं। 6 पांडुलिपियों में एक को छोड़कर बाकी की तिथियों में गड़बड़ी नहीं मालूम होती। तत्पश्चात श्री जायसवाल ने 1.5 दर्जन के लगभग प्राचीन मैथिली पांडुलिपियों की जाँच करके यह मत दिया कि लक्ष्मण सेन संबत में 1119 जोड़ने पर हम तत्कालीन ईस्वी सन काल का पता लगा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऊपर की संख्या केवल कर्णाट या उइनिवर वंश तक के ऐतिहासिक तिथियों की जानकारी के लिए उक्त संख्या में क्रमशः 2 वर्ष कम कर लेना होगा, यानी जायसवाल के मत से 1530 ईस्वी के पहले की तिथियों के लिए लक्ष्मण संवत में 1119 जोड़ने से तत्कालीन ईस्वी सन का पता लगेगा, किंतु बाद की तिथियों के लिए 1109 जोड़ना आवश्यक होगा। बहुत से विद्वान लक्ष्मण संवत का प्रारंभ 1106 में ही मानते हैं। इस तरह 1106 से 1119 तक के काल में अनिश्चित ढंग से कभी लक्ष्मण संवत का आरंभ बताया जाता है। ऐसी स्थिति में 252 लक्ष्मण यानी राजा गणेश्वर की मृत्यु का वर्ष 1358 ईस्वी से 1371 के बीच में पड़ेगा। दूसरी ऐतिहासिक घटना इब्राहिम शाह की मदद से तिरहुत का उद्धार है। जौनपुर में इब्राहिम शाह नाम का मुसलमान शासक अवश्य था और उसका राज्यकाल भी निश्चित है। 1402 में इब्राहिम शाह गद्दी पर बैठा, तभी कीर्ति सिंह के आवेदन पर वह तिरहुत में अलसान को दंड देने गया होगा। अतः इब्राहिम शाह के तिरहुत जाने का समय 1402 ईस्वी के पहले नहीं हो सकता, यह ध्रुव सत्य है। ज्यादा से ज्यादा 1371 में गणेश्वर की मृत्यु और उसके 31 वर्ष के बाद इब्राहिम शाह का मिथिला आगमन बहुत से विद्वानों को खटकता है। इसलिए इस व्यवधान को समाप्त करने के लिए कई तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जायसवाल को यह व्यवधान खटका और उन्होंने इसको दूर करने के लिए एक नया उपाय निकाला। कीर्तिलता में 252 लक्ष्मण संवत की सूचना देने वाला पद्य इस प्रकार है। लखन सेन नरेश लिहिय जबे पक्ष पंचवे। महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने इसका अर्थ किया था कि जब लक्ष्मण सेन का 252 लिखित हुआ, जायसवाल ने इसे ठीक नहीं माना और उन्होंने जब बे का अर्थ 51 निकाला किया और उसे 252 में जोड़कर इस वर्ष की संख्या 304 लक्ष्मण सेन ठीक किया, अर्थात 1423 ईस्वी। जबे स्पष्ट से समय सूचक क्रिया विशेषण अव्यय है, इसे खींचतान करके वर्ष गणना का माध्यम बनाना उचित नहीं जान पड़ता। वस्तुतः तो जो समय व्यवधान जायसवाल को खटक रहा था वह सत्य था और 31 वर्ष के बाद ही इब्राहिम शाह तिरहुत आया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं मालूम होती। उल्टे जायसवाल जी की नई गणना से कई ऐतिहासिक भ्रांतियां खड़ी हो जाती हैं। उन्हीं के बताए काल को इसे माने तो राजा कीर्ति सिंह 1423 या 24 ईस्वी में गद्दी पर बैठेंगे। ऐतिहासिकता यह है कि राजा शिव सिंह को 219 लक्ष्मण संवत में रम महाराजा धीराज कहा गया है। यदि गोपेश्वर 304 लक्ष्मण संवत में मरे जबकि ये स्वयं राजाधिराज थे, तो शिव सिंह का उनके पहले राजाधिराज हो जाना असत्य हो जाता है। इधर समय के इस व्यवधान पर डॉक्टर सुभद्र झा ने भी गंभीरता से विचार किया है। उन्होंने डॉक्टर जायसवाल के मत को ठीक नहीं माना और लक्ष्मण संवत 252 में राजा गणेश्वर की मृत्यु को स्वीकार किया है, परंतु उन्होंने कहा है कि मृत्यु के बाद कीर्ति सिंह अपने भाई के साथ अपने पिता के शत्रु से बदला लेने के लिए इब्राहिम शाह के पास गए, जो कि जौनपुर में इब्राहिम शाह नाम का कोई शासक 1402 ईस्वी के पहले नहीं हुआ। इसलिए डॉक्टर सुभद्र झा ने माना है कि कीर्ति सिंह जौनपुर नहीं जौनापुर गए, जो कि लिपिकार की गलती से जोइनीपुर के स्थान पर लिखा गया है। उन्होंने जार्ज ग्रेसन की रचना में प्रयुक्त योगिनीपुर को, जिस ग्रेसन ने पुराने दिल्ली कहा है, जौनापुर का सही रूप बताया। डॉक्टर सुभद्र झा को योगिनीपुर के पक्ष में कीर्तिलता में प्रमाण भी मिला है। पखियों पट्टन चारों मेखल यंयोन नीर पखारिया। श्री झा का कहना है कि इस पंक्ति में जलोन शब्द का अर्थ यमुना है। विद्यापति के पदों में जलोन और अलून दो शब्द मिलते हैं जिसका अर्थ यमुना है। ऐसे स्थिति में पंक्ति का अर्थ होगा नगर जो यमुना के जल से प्रच्छालित या सुंदर मेखला की तरह मालूम होता था। तय है कि ऐसी अवस्था में यह शहर जौनपुर नहीं हो सकता। यह अवश्य दिल्ली था, किंतु दिल्ली में डॉक्टर झा को उस समय के किसी इब्राहिम शाह का पता नहीं चला। इसीलिए कहना है कि इब्राहिम शाह अवश्य फिरोज तुगलक का कोई अति प्रसिद्ध सेनापति रहा होगा। फिरोज शाह और भोगेश्वर का संबंध भी यहाँ एक प्रमाण हो सकता है, किंतु कीर्ति सिंह ने कीर्तिलता में कई जगह इब्राहिम शाह को बादशाह या सुल्तान कहा है, फिर एक अप्रसिद्ध से सेनापति को ऐसा कहना ठीक नहीं मालूम होता। इस कठिनाई को भी झा ने दूर कर दिया। उनका कहना है कि आदर के लिए ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा मिथिला में राजा के भाई या राजघराने के किसी व्यक्ति को राजा अधिराज कह दिया जाता है। इस तरह झा के मत से जौनापुर योगिनीपुर था, जो जलोन यमुना के नीर से प्रचलित था और यहाँ फिरोज शाह बादशाह था, जिसका सेनापति कोई अप्रसिद्ध इब्राहिम शाह था, जिसे कीर्ति सिंह आदर के लिए बादशाह भी कहा करते थे। इस दुरस्त कल्पना के लिए डॉक्टर झा के पास दो आधार हैं। पहला, ग्रियर्सन के टेस्ट ऑफ मैन की दो कहानियों में आया योगिनी पुरुषोत्तम, जिसे इन्होंने पुराने दिल्ली का कथा कहानियों में आने वाला नाम बतलाया है। प्राचीन पुस्तकों में कई स्थानों पर दिल्ली का नाम योगिनीपुर बताया गया है, किंतु इसका जौनापुर हो जाना अवश्य कठिन है। अबरहा शब्द जयोन, जिसे डॉक्टर झा ने यमुना कहा है, प्राकृत में यमुना का जौना हो जाता है, इसलिए जयोन हो सकना नितांत असंभव तो नहीं है, पर देखना होगा कि वस्तुतः यह शब्द क्या है। कृतलता में एक पंक्ति आती है, फरमान भेली कयोड़ साही, यहाँ कयोड़ का अर्थ है कौन, इसका भ्रंश में कमण रूप मिलता है। कीर्तिलता में भी कमण कमण रूप मिलते हैं, यह कौन या कमण कह पुनः का विकसित रूप है। इसी तरह जौन, जिसका अर्थ है जौन यानी जो, जवन का प्रयोग तो आज भी पूर्वी हिंदी में पाया जाता है। कमण कयोन की तरह जवन जौन भी रूप में मिलते हैं, ऐसा एक शब्द और है। जयोन दरबार मेयोणे, यानी जिस दरबार में बाबूराम सक्सेना ने इसकी व्युत्पत्ति जयोन यमुना से की है। इसी तरह हमने देखा जहाँ जयोन का अर्थ यमुना नदी नहीं है, सक्सेना द्वारा सांकेतिक ख प्रति में स्पष्टतः जौन लिखा हुआ है। इब्राहिम शाह की निराधार कल्पना डॉक्टर सुभद्र झा ने की है, वह तो हास्यास्पद कोटि तक पहुंच जाती है। कीर्तिलता में जिस इब्राहिम शाह का जिक्र है, वह जौनपुर का प्रसिद्ध इब्राहिम शाह ही था। राजा गोपेश्वर की मृत्यु 1371 ईस्वी में हुई और कीर्ति सिंह इब्राहिम शाह को 1402 ईस्वी में तिरहुत ले आए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। 31 वर्ष के मध्यांतरित समय में कीर्ति सिंह कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि वे उस समय तक काफ़ी छोटे रहे होंगे, और फिर कुछ कर सकने के लिए अवसर की भी प्रतीक्षा करनी होती है। उस समय की मिथिला के विषय में विद्यापति ने लिखा है कि चारों ओर अराजकता फैली थी, ठाकुर ठग हो गए, चोरों ने घरों पर कब्जा कर लिया, वृत्तियों ने स्वामिनियों को पकड़ लिया, धर्म नष्ट हो गए, काम धंधे ठप हो गए, जाति अजाति में शादियां होने लगी, कोई काव्य रस का समझने वाला न रहा, कभी लोग भिखारी होकर इधर उधर घूमते रहे, जाहिर है ऐसी अवस्था तुरंत नहीं हो जाती। इस तरह के सांस्कृतिक विनिपात में कुछ समय लगता ही है। इस तरह की संस्कारहीनता एक साल में ही नहीं आ जाती, तय है कि इस प्रकार तिरोहित से गुणों के तिरोहित होने में कुछ समय लगा होगा। अक्षर रस बुझे निहार नहीं, कवि कुल भवि भिखारी भयो, तिरोहित तिरोहित सब गुणे रा गणेश जब सग गऊ। विद्यापति भी उस समय छोटे रहे होंगे, जनपुर के वर्णन से लगता है कि विद्यापति ने नगर देखा था, संभवतः राजा के साथ गए हों, क्योंकि जौनपुर का ऐसा अभिमयपूर्ण चित्रण बिना चाक्षुष प्रत्यय के संभव नहीं है। यह सब 10-11 वर्ष के विद्यापति से तो कभी संभव नहीं हो सकता। मेरा अनुमान है कि उस विद्यापति की अवस्था 25-30 के आसपास रही होगी। इसी से मैंने पहले ही कहा है कि कीर्तिलता को प्रथम रचना मानना ठीक नहीं है। इसी तरह विद्यापति का जन्म 1374 ईस्वी के आसपास संभव मालूम होता है। गणेश्वर के दरबार में गणपति ठाकुर के जाने आने की बात केवल जनश्रुति पर ही आधारित है, इसलिए गणेश्वर की मृत्यु के समय विद्यापति का होना प्रमाणित नहीं होता। इब्राहिम शाह के संबंध में एक और भी ऐतिहासिक सत्य कीर्तिलता में रचित है। कीर्तिलता में विद्यापति लिखते हैं कि कुमार कीर्ति सिंह और वीर सिंह के निवेदन पर राजा गणेश्वर के हत्यारे असलान को दंड देने के लिए इब्राहिम शाह की सेना तैयार हुई, किंतु भाग्य की लिखा कौन तारे, सेना सजी थी पूरब जाने के लिए किंतु चली पश्चिम, पुब्बे सेना सज्जे पश्चिम हुए उपयान, आण करई ते आण भयो वे चरित्र को जान। तारीख मुबारकवादी से पता मुबारकशाही से पता चलता है कि 1401 ईस्वी में जो है सुल्तान इब्राहिम शाह जौनपुर की गद्दी पर बैठा, दिल्ली के सुल्तान महमूद और उसके सेनापति इकबाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इब्राहिम एक बृहद सेना लेकर उसके साथ युद्ध करने गया, इसी घटना की ओर कीर्तिलता में संकेत किया गया है। राजकुमारों की प्रार्थना पर इब्राहिम तिरहुत जाने को तैयार तो हुआ, उपर्युक्त घटना के कारण उसे पश्चिम जाना पड़ा। लाचार दोनों भाई इब्राहिम शाह की सेना के साथ बहुत दिनों तक तो घूमते रहे। उनकी करुण अवस्था का अत्यंत हृदय विदारक चित्रण विद्यापति ने किया है। उनके पास न अन्न था, न वस्त्र, घोड़ों के लिए घास तक नहीं मिलती, शरीर सूख कर काटा हो गया, वे गिन गिन कर उपवास करने लगे। अपने नायकों की इस विपन्न अवस्था का चित्रण विद्यापति ने काल्पनिक करणोत्पादन के लिए नहीं किया है, बल्कि वह एक ऐतिहासिक सत्य है। विद्यापति के काल निर्णय के सिलसिले में अन्य प्रमाणों पर विचार करना चाहिए। विद्यापति के दो ऐसे पद मिलते हैं जो गियासुद्दीन आजम शाह और नसर शाह को समर्पित किए गए हैं। कवि शेखर भव अबरू रूप देखी राय नसरत शाह नेजली कमलमुखी। डॉक्टर उमेश मिश्र ने लिखा है कि नसरत शाह प्रसिद्ध नसीब शाह दिलेश्वर अलाउद्दीन हुसैन शाह के 18 पुत्र में सबसे बड़े थे। ये बड़े योग्य थे और पिता के मरने पर सन 1521 ईस्वी में इनको राज्य मिला। इस नसरत शाह ने 1530 के लगभग तिरोहित पर चढ़ाई की। इस तर्क के आधार पर मेरी मान्यता के अनुसार विद्यापति की आयु 155 वर्ष के आसपास होती है, जो बिल्कुल असंभव है। वस्तुतः यह नसरत शाह और कोई नहीं फिरोज तुगलक का पौत्र था, जिसने 1394 ईस्वी से 1399 ईस्वी तक शासन किया और विद्यापति के पद जो आरंभिक अवस्था के लिखे गए थे ईस्वी नसरत शाह को समर्पित किए गए हैं। 1411 ईस्वी में राजा शिव सिंह के सिंहासनारोहण पर विद्यापति ने अवहट्ट भाषा में एक छोटी सी रचना की, जिसकी पंक्तियां हैं, अनल रंध्र कर लखन नरवैशक समुद्ध कर अग्नि शशि चैत करी छठी जेठा मिले औ वार वे हप्पे जाऊ लसी विद्यावय कविवर एहु गावय मानव मन आनंद भया सिंहासन शिव सही बैठो उच्छवे वरस विरस गया। 293 लक्ष्मण शब्द 1324 शक के चैत मास के शुक्ल षष्ठी ज्येष्ठा नक्षत्र बृहस्पति को संध्याकाल में देव सिंह ने पृथ्वी छोड़कर सुरलोक प्रयाण किया और राजा शिव सिंह सिंहासन पर बैठे। शिव सिंह विद्यापति के सर्वप्रिय आश्रयदाता थे, जिनके नाम के समर्पण के साथ कवि ने 250 के आसपास उच्च कोटि के श्रृंगारिक पदों की रचना की। विद्यापति के द्वारा रचित एक पद में कहा गया है कि शिव सिंह के युद्ध क्षेत्र में तिरोधना के 32 वर्ष बाद विद्यापति ने एक स्वप्न में देखा और उन्हें अपने मृत्यु का आभास होने लगा। सपन देखल हम शिव सिंह भूप 32 बरस पर सामर रूप बहुत देखल गुरुजन प्राचीन अब भैरे हूँ अब आयु विहीन। राजा शिव सिंह का तिरोधान 1415 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ऐसी स्थिति में 1447 ईस्वी के बाद विद्यापति की मृत्यु संभावित है। श्री शिव नंदन ठाकुर ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के स्वप्न फल के प्रकरण को मिलाकर यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि स्वप्न के 8 महीने बाद विद्यापति की मृत्यु हुई, किंतु नेपाल दरबार की लाइब्रेरी में सुरक्षित हलायुद्ध मिश्र की पुस्तक ब्रह्म सर्वस की पांडुलिपि विद्यापति के शिष्य ने 341 संवत में की। पांडुलिपि के अंत में कहा गया कि लिपि के समय रूपधर विद्यापति के पास पढ़ रहा था। सत्य तो यह है कि विद्यापति का जन्म मृत्यु काल नाना प्रकार के सत्य असत्य प्रमाणों के जाल से आच्छन्न है। डॉक्टर विमान बिहारी मजुमदार सभी प्रमाणों के अध्ययन के बाद निम्नलिखित निर्णय पर पहुंचे। पहला, 1380 ईस्वी के आसपास विद्यापति का जन्म। दूसरा, 1395 से 1396 ईस्वी के बीच पद लिखकर गयासुद्दीन और नसरत शाह को उत्सर्ग करना। 1396-97 ईस्वी के बाद जौनपुर के प्रथम सुल्तान ने तिरहुत जीता। 1397 के बाद नसरत खां को सुल्तान पद पर दावा करते के पहले ये दोनों पद लिखे गए थे। तीसरा, 1400 ईस्वी के आसपास नैमिषारण्य निवासी देवी सिंह के आदेश से भूपरिक्रमा की रचना। चौथा, 1402 से 1404 ईस्वी के बीच इब्राहिम शाह द्वारा कीर्ति सिंह के मिथिला का सिंहासन प्रदान और उस समय कीर्तिलता की रचना। पांचवा, 1410 ईस्वी में विद्यापति के आदेश से काव्य प्रकाश विवेक की पोथी के अनुलिपि। इस समय कवि अलंकार शास्त्र का अध्यापन करते थे। इसी समय पुरुष परीक्षा की रचना और देव सिंह की मृत्यु के पहले अथवा पश्चात कीर्ति पताका की रचना। छठा, 1410 से 1414 ईस्वी के बीच शिव सिंह के राज्यकाल में 200 पदों की रचना। सातवां, 1418 ईस्वी में द्रोणावर के अधिपति पुरादित्य के आश्रय में राजबनौली में लिखनावली की रचना। आठवां, 1428 ईस्वी में इसी राजबनौली में विद्यापति द्वारा भागवत की अनुलिपि का समाप्त करना। नौवां, 1430 से 1440 ईस्वी के बीच पद्म सिंह और विश्वास देवी के नाम से एक पद की रचना और शैव सर्वस्वस्वार की गंगा वाक्यवली की रचना। दसवां, 1440 से 1460 ईस्वी के बीच विभाग सागर दान वाक्यावली और दुर्गा भक्ति तरंगिणी की रचना। ग्यारहवां, 1460 ईस्वी में स्मृति के अध्यापक के रूप में ब्राह्मण सर्वस्व का अध्ययन। इस दिशा में सर्च रिपोर्ट के अनुशीलन के समय मुझे लखन सैनी कवि की कुछ पंक्तियां दिखाई पड़ी। लखन सैनी कवि का रचना काल 1481 संवत दिया हुआ है, यानी 1424 ईस्वी। रचनाकार जौनपुर के बादशाह इब्राहिम शाह का समकालीन है और उसने बादशाह के प्रताप की प्रशंसा भी की है। यही नहीं, तत्कालीन भारत की अवस्था का जो चित्र लखन सैनी ने खींचा है वह आश्चर्यजनक रूप से विद्यापति के वर्णन से मेल खाता है। बादशाह जय वीरा हिम सही राज करे मही मंडल माही आपन महाबली पुहुम मिधावय जौन पूर्व छत्र चलावय संबद 1481 लखन सेन कवि तथा प्रगासी। जौनपुर के इब्राहिम शाह का काल 1424 तक तो था ही। इसी के साथ लखन सेन कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जिक्र करता है। जयदेव चले सर्ग की बाटा और गए घाग सुरपति भाटा, नगर नरेंद्र जो गए उनारी, विद्यापति कई गए लचारी। इन पंक्तियों से लगता है कि 1424 ईस्वी तक विद्यापति का शाह स्वर्गवास हो गया था, क्योंकि उनका नाम जयदेव और घाग के साथ ही कवि ने लिया है। और जयदेव को तो स्पष्ट स्वर्ग की बाट गई लिखा है, किंतु इस स्थिति काल को विद्यापति का अंतिम समय मानने में कठिनाई दिखाई पड़ती है। फिर भी यह एक विचारणीय सवाल तो है ही। वैसे कहा जाता है कि विद्यापति ने लक्ष्मण संवत 1499 यानी 1418 ईस्वी में राजा पौरादित्य के समय में लिखनावली का निर्माण किया, और यही 309 लक्ष्मण संवत यानी 1428 ईस्वी में भागवत की एक प्रति लिखना समाप्त किया। यहाँ ईस्वी सन को 1119 जोड़कर निश्चित किया गया है, और इस लखन सेनी का 1424 वाला काल ठीक नहीं बैठता। विद्वानों ने इस दिशा में कई प्रकार के प्रमाणों के आधार पर विचार किया है। इसी दिशा में मैं एक प्रमाण लखन सेनी का भी प्रस्तुत करता हूँ। अस्तु।